आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत रियासत में सबकी शमूलियत वाली और सबकी मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मालदीव के उनके हम मनसब मोहम्मद ओसान मामून ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। तरफेन ने बाहमी दिफाई इश्तराक के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक दो बिलों पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। इंडिया एआई ने मुल्क में मसनूई जहानत को अख्तियार किए जाने और उसके फरोग की खातिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में आग की वजह से तकरीबन 1,00,000 बाशिंदगान को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। और बैडमिंटन में कुआलालंपुर में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय मलेशिया ओपन के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के इकदाम और बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्टों का आगाज किया जाना रियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है।
आज यहां 2,00,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे। मेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है।
उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए अहदबस्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि सौरण आंध्र प्रदेश 2047 विकसित भारत 2047 का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का मरकज है और एनडीए हुकूमत आंध्र प्रदेश के 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की मईशत बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए रियासत की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में शमूलियत वाली और सभी की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने पर अहदबस्ता है। जनाब मोदी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और बल्क ड्रग पार्क रियासत में सनअती तरक्की और रोजगार पैदा करने के अमल को रफ्तार अता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कृष्णापट्टनम सनअती पार्क सिटी हजारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी को रागिब करेगा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा खित्ते की तरक्की को यकीनी बनाएगा।
हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रिज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी। इससे आंध्र में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों इंडस्ट्रियल जॉब तैयार होगी।
इससे पहले आज विशाखापट्टनम में अपनी आमद के बाद जनाब मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण के हमरा एक रोड शो भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मसर्रत का इजहार किया कि विशाखापट्टनम में जुनूबी साहिली रेलवे जोन के हेडक्वार्टर की तामीर से आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे खित्ते में सयाहत को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि एनडीए हुकूमत समुद्री मईशत की मुकम्मल सलाहियत को बरुएकार लाने के लिए आंध्र प्रदेश की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 4,593 करोड़ रुपए मालियत के सड़क तामीर और तौसीकारी के 10 प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने रायलसीमा खित्ते में 5,718 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे लाइनों और 3,049 करोड़ रुपए मालियत के 7 सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مالدیپ کے ان کے ہم منصب محمد غسان مامون نے آج دو طرفہ دفاعی اشتراک کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں تربیت، مسلسل فوجی مشقیں اور دفاعی پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہ باہمی بات چیت آج نئی دلی میں ہوئی۔ بات چیت کے دوران طرفین نے بھارت مالدیپ جامع اقتصادی اور بحری سلامتی سے متعلق شراکت داری کے مشترکہ نظریے کے لیے مل کر کام کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاریوں کے خاطر صلاحیت میں اضافے کے سلسلے میں مدد کے لیے بھارت کی رضامندی کو دہرایا، جس میں مالدیپ کی ترجیحات اور بھارت کی پڑوس مقدم کی پالیسی کے مطابق مالدیپ کو دفاعی پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شامل ہے۔ جناب مامون نے مالدیپ کے لیے مدد کی خاطر سب سے پہلے ملک کے طور پر بھارت کے تاریخی رول کی ستائش کی۔ انہوں نے جدید بنیادی ڈھانچے اور دفاعی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت میں مالے کی مدد کرنے کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ مالدیپ کی درخواست پر بھارت نے مالدیپ کو دفاعی ساز و سامان اور اسٹور سونپے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ بات چیت سود مند رہی اور اس سے بھارت مالدیپ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ مالدیپ کے وزیر دفاع بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے میگھالیہ اور اوڈیشہ کے دورے پر رہیں گی۔ صدر جمہوریہ میگھالیہ میں اومیام میں شمال مشرقی پہاڑی خطے کے لیے آئی سی اے آر تحقیقی کمپلیکس کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گی۔ 10 جنوری کو بھونیشور کے اوڈیشہ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گی اور پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک ملک ایک الیکشن سے متعلق دو بلوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ بلوں کو باضابطہ طور پر آئین 129واں ترمیمی بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قوانین ترمیمی بل 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرپرسن اور بی جے پی کے پارلیمانی رکن پی پی چودھری نے کہا کہ کمیٹی تمام متعلقہ فریقین کو سننے کی کوشش کرے گی، خواہ وہ قانونی ماہرین ہوں، سول سوسائٹی، عدلیہ یا سیاسی پارٹیوں کے ممبران ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام اراکین سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کمیٹی اس سلسلے میں مزید پیش رفت کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ میٹنگ کے دوران قانون و انصاف کی وزارت، قانون ساز محکمے کے نمائندوں نے جمہوری قوانین کی دفعات کے بارے میں اراکین کو واقف کرایا۔ 39 نفری کمیٹی میں لوک سبھا سے 27 اور راجیہ سبھا سے 12 ارکان شامل ہیں۔ کمیٹی اپنی رپورٹ اگلے پارلیمانی اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن سونپے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت ایک جدید سبھی کی شمولیت والے اور ترقی پذیر معاشرے کی تشکیل کے لیے دیرینہ چیلنجوں سے نمٹنے کے راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد بالکل منفرد ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک جمہوری طریقے سے منفرد انداز سے ترقی کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے زور دیا کہ اس سفر کا منتر آگے بڑھنا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم مودی کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی اور روایت دونوں محاذ پر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ نوجوان یقینی طور پر اس کوشش کی رفتار کو تیز کرنے اور ہمارے اہداف کو حاصل کرنے کا ایک اہم عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے آج اعلان کیا ہے کہ بھارت میں مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی اور اختیار کرنے کے عمل کے لیے ڈیجیٹل انڈیا کارپوریشن کے تحت ایک آزاد بزنس ڈویژن آئی بی ڈی انڈیا اے آئی نے مائیکروسافٹ کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت نامے کے حصے کے طور پر مائیکروسافٹ اور انڈیا اے آئی طلبہ، تدریسی عملے، ٹیکنالوجی تیار کرنے والوں، سرکاری عہدیداروں، خواتین کاروباریوں سمیت 5 لاکھ افراد کو تکنیکی مہارت کی تربیت دی جائے گی۔ مذکورہ فریقین کے ذریعے دیہی اے آئی اختراع کے فروغ کے لیے اے آئی کیٹلسٹ نامی اے آئی ایکسلنس کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں مہاکم 2025 کے لیے آکاشوانی اور دوردرشن کے خصوصی نغمے کا آغاز کیا۔
جے مہاکمبھ، جے مہاکمبھ، پگ پگ جے کارا مہاکمبھ، تن کمبھ کمبھ، من کمبھ کمبھ، جیون سارا اب کمبھ کمبھ۔
پرسار بھارتی چیئرمین نونیت سہگل، پرسار بھارتی سی ای او گورو دیویدی، دوردرشن کی ڈائریکٹر جنرل کنچن پرساد اور آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرگیا پالیوال گوڑ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ مہاکمبھ 2025 13 جنوری سے 26 فروری تک پریاگراج میں منعقد ہوگا۔ शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर मुमलिकत मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि प्रयागराज एयरपोर्ट की नई टर्मिनल इमारत 15 जनवरी से काम करने लगेगी। मरकजी वजीर मुमलिकत ने यह बात आज प्रयागराज एयरपोर्ट के मुआयने और प्रयागराज में अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग के बाद कही। जनाब मोहोल ने कहा कि रात में तैयारों के उतरने की तादाद में इजाफा हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो मुसाफिरों की सहूलत के मुताबिक परवाजों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा।
हमारा जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है तो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए इसलिए हम सब प्रयास करें, तो बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है और समय से पहले पूरा हो रहा है। 15 तारीख से ये नया टर्मिनल जो बिल्डिंग है ये ऑपरेशन में आ जाएगा। हर एक को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। विमान प्रवास जो भी करेगा, बाहर जाना हो यहाँ आना हो, मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है।
मरकजी वजीर मुमलिकत ने मुत्तला किया कि अहलकारों को खसूसी तवज्जो दिए जाने की हिदायत दी गई है ताकि महाकुंभ में आने वाले अकीदतमंदों को हवाई अड्डे पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेशनल कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में यौम जमहूरिया 2025 के कैंप में हिस्सा लेने वाले एनसीसी अफसरान और कैडेट से बातचीत की। फजाइया के सरबरा ने एनसीसी कैडेट्स की हौसला अफजाई की और यौम जमहूरिया के कैंप में उनके शामिल होने की सताइश की। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में एनसीसी कैडेट्स ने यौम जमहूरिया की परेड का हिस्सा बनने पर जोश व खरोश का इजहार किया। इस साल एक माह तवील कैंप में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कुल 2361 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 917 खातून कैडेट्स भी हैं। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा के उन 45 शुरका को रवाना किया जो दिल्ली में होने वाले कौमी यूथ फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। कौमी यूथ फेस्टिवल नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी तक होगा। हरियाणा के 30 नौजवान जिन्हें गुलकारी, रक्स, तकरीर और कहानी और किस्सागोई में पहला मकाम मिला है, वो कौमी यूथ फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के 45 नौजवान शुरका भी इसमें शिरकत करेंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज कानूनी मुआयनों के साथ जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के काम की तकमील का ऐलान किया। नई दिल्ली में मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने इस हुसूलियाबी को भारतीय रेलवेज के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी और तरक्की के लिए यकसर तब्दीली लाने वाला करार देते हुए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया। जनाब सोनोवाल ने दीनदयाल पोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन एक्सीलेंस सेंटर का संग बुनियाद रखा और कचरे को कारामद बनाने के एक प्लांट और केंद्रीय विद्यालय की एक नई इमारत समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। राजस्थान में शदीद सर्दी से आम जिंदगी मुतासर हुई है। घने कोहरे की वजह से रेल, सड़क और फजाई ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सीकर में फतेहपुर आज सबसे ठंडा मकाम रहा, जहां कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिका में लॉस एंजलिस ने हंगामी हालात का ऐलान किया है क्योंकि सिर्फ चंद घंटों में ही जंगल की आग 10 एकड़ से 2900 एकड़ तक फैल गई है। मकामी कम्युनिटी की इमारतें और कारोबार आग से मुतासिर हुए हैं या तबाह हो गए हैं। ये आग गुज़िश्ता शाम आग लगने की वजह से ही फैली है। तकरीबन 30,000 मकीनों को इनखला के अहकामात जारी किए गए हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 से ज़ायद ढांचों को खतरा लाहिक है। बैडमिंटन में मायनास खिलाड़ी एचएस प्रणॉय कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने बारिश से मुतासर मैच के पहले दौर में कनाडा के ब्रायन यांग को 12-21, 21-12, 12-15 से हराया। वो कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के शी फेंग से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत रियासत में सबकी शमूलियत वाली और सबकी मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मालदीव के उनके हम मनसब मोहम्मद गुसान मामून ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। तरफेन ने बाहमी दिफाई इश्तराक के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक दो बिलों पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। इंडिया एआई ने मुल्क में मसनूई जहानत को अख्तियार किए जाने और उसके फरोख की खातिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में की आग की वजह से तकरीबन 1,00,000 बाशिंदगान को नकले मकानी पर मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।